Kalpa Radio Exclusive Interviews।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
आज 10 अगस्त है। आज के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ये दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा।
पेंड्रा के हमारे साथी हैं पूरण छाबरिया जी, जिन्होंने बायोफ्यूल पे बहुत काम किया है और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका अर्पा रेडियो के इस कार्यक्रम में पूरण जी, नमस्कार।
धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार संज्ञा जी। आज के बायोफ्यूल डे पे सबको बधाई और शुभकामनाएं। पेड़ पौधों से निकलने वाले ईंधन से देश में बहुत सारे काम हुए हैं।
ये बहुत सारे काम क्या हुए हैं? हमने तो एक ही बायो ईंधन के विषय में रतन ज्योत या जेट्रोफा से जुड़ी हुई, उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे आपसे, उस पर आपने बहुत काम किया है। लेकिन इस पहले आप बताइए, इसके अलावा बायोफ्यूल में और कौन कौन से पौधे होते हैं जिनसे दुनिया भर में ईंधन का प्रयोग अलग अलग रूप में किया जा रहा है?
मुख्य रूप से देखें तो रतन ज्योत का तो एक नंबर पे है। दूसरा है भारत में एक और होती लक्ष्मी तरु बोलते हैं उसको।
अच्छा।
और तीसरा है करंज, चौथा है महुआ सीड भी। इस तरह के लगभग मेरे पास 32 प्रकार की बीज हैं जिससे हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छे हैं रतन ज्योत, करंज और लक्ष्मी तरु।
लेकिन ईंधन का मतलब सिर्फ डीजल का विकल्प हो ऐसा तो नहीं है? लकड़ी जलाना या कोयले का प्रयोग करना, ये सारी चीजें भी हमको पौधों से ही प्राप्त हुई हैं जिसका उपयोग हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, तो क्या इनको भी बायोफ्यूल के अंतर्गत ही माना जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और निश्चित तौर से मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि दुनिया में जितने भी विरासत है, हेरिटेज है, यानी ऐतिहासिक महल वहल या जितने देखेंगे आप, कहीं भी जाएंगे, जयपुर जाइए, राजस्थान जाइए और कहीं भी जाइए, तो एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये कोयले का आया है 1750 में और डीजल का बना है ये 1850 में। तो मैं कहता हूँ इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारे यहाँ राजे महाराजे बड़े बड़े बिल्डिंग और महल किले रहते रहे। आप एक चीज गौर करेंगे, अच्छे अच्छे महल हैं आज भी, कहीं देखने जाएंगे जयपुर में विशेष तौर से, तो कहीं आपको काला ताज दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे यही ईंधन था रतन ज्योत का, जिससे कतरे इसे काला करने पड़ता रहा। और इसके साथ इसके बचे हुए अवशेष से दुनिया की सबसे अच्छी जैविक खाद तैयार होती है।
अच्छा।
और ये जैविक खाद इतनी अच्छी है कि आप हम इसको बिना डीकम्पोज, आप अगर गोबर को भी पहले उपयोग करेंगे तो पहले उसको सड़ाना पड़ता है, डीकम्पोज करना पड़ता है, लेकिन इसका जो खाद निकलती है, इसका जो कीट निकलता है, इसको आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। और इसके ये इतनी उपयोगी है कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म खाद और एनपीपी जो रहती है किसानों को, अभी किसानों की बड़ी खाद के लिए बहुत मारामारी हुई, लेकिन इसमें इतनी जबरदस्त उसका रिजल्ट है। इसको कर्नाटक यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से और हमारी छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी इसकी रिपोर्ट वहाँ पर अभी उपस्थित है, उसको देख सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी क्रांतिकारी है।
अच्छा।
और साथ ही एक चीज और बता दूं आपको मैं, इसके फ्यूल के बाद इसमें जो ग्लिसरीन निकलती है, ये ग्लिसरीन भी समझिए कि दुनिया की सबसे अच्छी ग्लिसरीन है। एक तो विशेषकर महिलाओं को जो फोड़ा फुंसी चेहरे में जो दाग धब्बे हो जाते हैं।
अच्छा।
इसके ग्लिसरीन से सबसे अच्छे इसका विकल्प भारत नहीं पूरे विश्व ने माना है। इसकी रिपोर्ट भी है, अमेरिका की भी है, इंग्लैंड की भी है, जो दुनिया के बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर हैं उनकी रिपोर्ट भी है। और इसको अगर सरकार बढ़ावा दे तो निश्चित तौर से किसानों के लिए, इस देश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम हो सकता
है। ये तो रतन जोत के बाई प्रोडक्ट्स हो गए हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि पेट्रोलियम जब हम को समुद्र से निकाला जाता है तो उसमें कई तरह की चीजें निकलती हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल के बाद आखिर तक ग्लिसरीन तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह हाँ। रतन जोत में, जैसा आपने बताया कि रतन जोत के बीज में इतना ऑयल या डीजल या जो कुछ भी हम उसको बोलें जो निकाला जाता है, उससे इतने सारे पदार्थ निकलते हैं बाद तक, ग्लिसरीन तक पहुंचते हैं। लेकिन इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बारे में हमने सुना है कि इससे पहले तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री जी की कार चलती थी और बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए थे हमारे स्टेट भर में कि बायोडीजल किसी तरह निर्मित किया जाए। लेकिन वो परिकल्पना वैसी साकार छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। क्या देश दुनिया में और कहीं रतन जोत के माध्यम से डीजल का उपयोग किया जा रहा है?
हाँ, एक जगह ये हुआ था अफ्रीकी देश में, क्योंकि वहाँ बहुत गरीबी थी तो उतना कर नहीं पाए। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जो बीज है रतन जोत का, वो पिंडरा गौरला मरवाही क्षेत्र का है। इसको DRDO ने भी प्रमाणित किया है। आज से जिस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रतन जोत लगाया जा रहा था, और निश्चित तौर से बहुत सारी शासकीय योजना में ऐसा होता है कि गंभीरता से ध्यान न देने के कारण ये परिणाम आते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस योजना को आगे लेकर आने वाले इस देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे हमारे देश में इसरो के। उनके उनकी परिकल्पना का ये रूप है। और अभी आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज, अभी कुछ 5-6 महीने पहले इसी बायोफ्यूल से यानी रतन जोत के तेल से विमान ही नहीं, फाइटर प्लेन भी उड़ाया गया था लद्दाख से, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी मन की बात में।
जी हाँ, यही बात थी जो हमको पता थी और हमने कार्यक्रम के शुरू में श्रोताओं से ये कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। तो रतन जोत के बीज से निकले हुए ऑयल से प्लेन तक चलाया जा चुका है
तो, और फाइटर प्लेन भी।
जी हाँ, और आप जैसा बता रहे हैं पेंड्रा मरवाही गौरेला क्षेत्र के जो रतन जोत के बीज है वो सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं।
जी,
हमारे छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग करके क्या संभावनाएं हैं किसानों को आर्थिक विकास का बढ़ावा देने के लिए? और पेंड्रा मरवाही के अलावा बाकी छत्तीसगढ़ में और जगह पे इसकी फसल कैसी हो रही है?
नहीं, वो भी अच्छी है। ये बता रहा हूँ कि इसे लगा हुआ कोरबा का क्षेत्र, कोरिया का क्षेत्र, जसपुर का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र, इसके अलावा बस्तर साइड में भी हो रहा है। आपके दुर्ग भिलाई में भी देखिए नहर के किनारे बहुत लगे हैं, वो भी अच्छे हैं। पूरे बीज, ज्यादातर बीज यहीं के सप्लाई हुए हैं और इनमें बीज अच्छे। एक खास बात आपको और बताऊं, ये धरती का एकमात्र ऐसा पौधा है कि जिसमें कि साल में 3 बार फसल देता, हर 4 महीने फसल देने वाला ये पौधा है।
अच्छा,
और उससे बड़ी बात है इसमें जहाँ बिल्कुल बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, पानी की जरूरत भी नहीं है, वहां भी ये इसका भरपूर उत्पादन होता है। लेकिन निश्चित तौर से इसमें जितनी गंभीरता से इसको आगे बढ़ाना था उतनी गंभीरता से इसको नहीं बढ़ा। नहीं तो वरना आपको ये बात बताऊं, आज भी मैं इसी में लगभग 20 साल से कार्य कर रहा हूं, आज भी रतन जोत की बीज लेता हूं। पूरे देश में सबसे ज्यादा सप्लाई करने का श्रेय मुझे ही मिला है। अच्छा। और जो ये 27 अगस्त 2018 को विमान उड़ा गया था देहरादून से दिल्ली, 500 के किसानों से लेकर मैंने वो बीज का सप्लाई किया था, जिससे तेल निकालकर CBDA छत्तीसगढ़ ने ये विमान उड़ाने का भारत में एक अद्भुत प्रयोग किया था और विश्व में 3रे नंबर का था।
तो ये जो विमान उड़ा था ये आपके क्षेत्र से गए हुए बीजों से ही प्राप्त बायोडीजल से उड़ाया गया था?
बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसके पेपरों की कटिंग वटिंग सब दिया, छत्तीसगढ़ के बायोपुल से विमान उड़ा, ये बीजों से विमान उड़ा, बड़े बड़े पेपरों में ये 28 अगस्त और 19 अगस्त के किसी पेपरों में या साइड में दे सकते हैं।
जब इतनी सारी इसकी संभावनाएं हैं तो लोग इस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? किसान, सरकार, सारे लोग इस रतन जोत की खेती को बढ़ावा उतना ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है?
आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। निश्चित तौर से लोगों को इसमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी अभी पाम ऑयल जो विदेश से आता है उसका ऑयल परसेंट रहता है मुश्किल से 15 से 18%, और वो 3 साल में तैयार होता है, बड़ा पेड़ तैयार होता है। लेकिन ये समुद्री किनारे से उगने वाला पाम उसमें ऑयल परसेंट, लेकिन हमारे यहाँ के जो ये तेल है रतन जोत, इसका न्यूनतम प्रतिशत 35 से 40% तक इसमें तेल निकलता है, और इसके जो बायो प्रोडक्ट हैं उस वो भी बहुत कीमती है। अगर इसमें सरकार निश्चित तौर से अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ही देश की आधी ईंधन की समस्या को पूरा किया जा सकता है। एक बात आपको और बता दूं, इससे कार चलाई गई है, मुख्यमंत्री की गाड़ी चलाई गई है, ट्रेन भी चलाया गया है, ट्रैक्टर का तो प्रयोग रायपुर में बहुत लगातार अभी भी हो रहा है, हम लोग भी थोड़े थोड़े रूप यहाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डीजल यहाँ पेट्रोल पंप में बिकता है उससे इसका एवरेज 5 से 7 किलोमीटर अधिक है, इंजन की लाइफ भी बढ़ती है, और लुब्रिकेशन कुल 25% लगता है। अगर अगर आपको 1 लीटर लुब्रिकेशन लगता है एक टैंक के बाद 200 किलोमीटर में या 400 किलोमीटर में, तो इसमें आपका लुब्रिकेशन मात्र चौथाई लगेगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
अच्छा, और जो चलिए बीज तो हमारे स्टेट में बहुत हो रहे हैं रतन जोत के, लेकिन इनसे
जी
प्रोसेसिंग करने के लिए प्लांट्स क्या कुछ है हमारे छत्तीसगढ़ में?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, सीबीडी का प्लांट है, मेरे पास भी एक छोटा प्लांट है, और भी एक दो प्लांट है बड़ी आसानी से। ये एक एक क्रांतिकारी, अगर इसमें अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे तो देश के लिए, देश के किसानों के लिए, जैविक खेत के लिए, और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए और बेरोजगारी के लिए अद्भुत और ये आश्चर्यजनक। इसमें अगर थोड़ा सा सरकार का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो निश्चित तौर से पूरे देश में इसका नाम होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है।
लेकिन एक बात है, जब भी रतन जोत या जेट्रोफा का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, तेल, ईंधन, पर्यावरण, ये वो कुछ नहीं। बच्चे उसे खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं,
हाँ
इसलिए
नहीं,
लोग
बिल्कुल
जो है
सही,
इसको जहरीला समझते हैं और शायद इसकी खेती करने से डरते हैं। इसका क्या
चलिए बहुत अच्छी
स्पष्टीकरण
विषय,
देंगे आप?
बिल्कुल बिल्कुल ठीक उठाया। दुनिया में जो भी अच्छी चीज होती है उसकी पहले बुराई होती है। चलिए एक उदाहरण देता हूं मैं, अगर शहद आप ज्यादा खा लो, घी ज्यादा खा लो, तो वो भी बीमार करेगा। आपने एक इतना बढ़िया विषय बताया है, एक आपने 1.5-2 साल पहले एक रोग सुना होगा इबोला, जो पेट में कृमि हो जाती है,
इबोला जी हाँ।
हाँ ये उसका इतना आयुर्वेद में इतना क्रांतिकारी इसका इसका इलाज है, मैं कभी बताऊंगा कि आप किसी के, आप ज्यादा काजू खा लो, ज्यादा बादाम खा लो तो आपका पेट गड़बड़, दूध ज्यादा पी लो तो पेट गड़बड़ हो जाए, घी ज्यादा खा लो, लेकिन इसकी अगर निश्चित मात्रा में न्यूनतम रूप से खाया जाए तो ये बहुत बड़ी औषधि का भी काम करता है।
अच्छा
हाँ, ये इतनी शानदार इसका आउटपुट है, कभी आपको लगे। अच्छा ये जो बोलते हैं बीमार पड़ जाते हैं, मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में, इसके कई कार्यशाला में वहां भी गया था, विज्ञान भवन, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पुणे, सब जगह कार्यशाला में शामिल हुआ, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते, सब कुछ आए थे। मैंने एक ही बात मंच में कही थी कि आपने बोलता कि ये जहरीला होता है, इस बीमार पड़ते हैं, मैं बोला एक हिंदुस्तान के अंदर एक नाम बताइए जोड़ेफा के खाने से उसकी मृत्यु हुई, तो किसी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है ना, अस्पताल के पास रिकॉर्ड है, क्योंकि इसके जोड़ेफा खाने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती।
अच्छा,
और रहा सवाल ज्यादा खाने से, तो वो कुछ पेट में डिसेंट्री वगैरह वाला जो प्रॉब्लम, डायरिया टाइप का प्रॉब्लम, वो बस आ जाते हैं लूज मोशन का, बाकी कुछ भी इसका है, आप ज्यादा खाएंगे तो हो ही जाता है और बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। यही बताया मैं तो कई लोगों को, थोड़ा सा खाकर भी दिखाया हूँ मंच में, क्रांतिकारी वो बहुत उपयोगी है। आप कभी देखिएगा, तत्काल अगर घर के किसी का हाथ कट जाता है तो तुरंत इसके पत्तों का दूध लगाइए, आपका आपको देखिए शाम तक आपका जो कटा हुआ हिस्सा जुड़ना शुरू हो जाता है, 2 दिन में गायब।
अच्छा,
और खून रुकना तो तत्काल बंद हो जाता है।
तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बीज में जो तेल होता है वो इतने कंसंट्रेट फॉर्म में होता है कि उसको खाने से कुछ देर के लिए आदमी बीमार पड़ सकता है, बेहोश हो सकता है, लेकिन इसके कारण मृत्यु नहीं होती है। तो
नहीं सकती, बिल्कुल सही।
अगर एक बीज को जलाया जाए तो वो कितनी देर तक जलता है?
बिल्कुल सही है, मोमबत्ती की तरह पहले इसका हमारे क्षेत्र में इसी का उपयोग करते रहे, वो साइकिल की स्पोक में इसको 10-20 बीज डाल देते रहे और लोग चला करते रहे अंधेरे में, जब भालू का क्षेत्र रहा था जैसे, यहाँ लाइट वेट नहीं थी, पुराने लोग बजाते हैं, बैलगाड़ियों में उपयोग करते रहे, ढेरों उपयोग करते रहे इसका। एक खास बात आपको और बताऊं कि माँ दंतेश्वरी बस्तर में जो है तो लगभग 250 से 300 साल तक इसका ही दिया जलाया जाता था। और सबसे खास बात, अक्सर लोग पहले आंखों में काजल लगाते रहे तो वो घी की काजल लगता रहा, और अगर आप जाएंगे पुराने पुजारी या पुराने मंदिरों में जाएंगे तो एक नई चीज आपको और मिलेगी, इसका निकला हुआ काजल अगर आंखों में लगाया जाए तो आंखों में जैसे मोतियाबिंद या आंखों के रोग होते हैं ना, वो पूरे के पूरे मिट जाते हैं, इसलिए इसको रतन ज्योत का नाम भी दिया गया है आयुर्वेद में।
अच्छा अच्छा तो क्या पुराने समय में भी इस इन बीजों का उपयोग मंदिरों में दीपक के रूप में किया जाता था?
सिर्फ इसी का ही उपयोग किया जाता रहा, मतलब इसी का ही उपयोग किया जाता रहा। और आप देखेंगे किसी से पूछिए, किसी भी इतिहासकार से पूछिए, कहीं भी जाइए, ये पूछिए खाली एक ही प्रश्न, ये मंदिरों, आप किसी भी तेल को जलाइए, चाहे राई तेल जलाइए, मूंगफली तेल जलाइए या घी जलाइए, तो कहीं कहीं वो महलों में काले काले दाग पड़ जाते रहे। लेकिन इसकी जो खासियत है, इसका जो कालापन निकलता है वो नीचे रह जाता है और दीवारों को, किसी महलों को या किसी बिल्डिंग को, मंदिर को कालापन नहीं करता। इसका जो इसमें प्रदूषण सबसे न्यूनतम है, यानी ये कहिए नहीं के बराबर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर डीजल में प्रदूषण 90% है, इसमें 1% भी नहीं है। ये स्थिति है।
कुल मिलाकर आज विश्व जैव ईंधन दिवस पर पूरन छाबरी जी ने जो हमको सब बताया कि भारत में जैव ईंधन का अधिकाधिक उपयोग पर्यावरण सेहत सुधारने में भी कारगर साबित होगा, स्वस्थ सुखी और बेहतर जीवन के लिए हमें जैव ईंधन की अच्छाइयों को अपनाना ही चाहिए, और हमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों का समर्थन करने और देश में ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।
एक बात मैं आपको चलते चलते एक और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, और इसको हर कोई उपयोग करे। एक बार मैं इसका पौधा आपसे लगभग 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री के यहाँ ले गया था, और इसमें प्रदूषण अवशोषित करने के अद्भुत गुण हैं। ऐसा गुण किसी पौधे में नहीं है। आप अगर कहीं भी प्रदूषण है, इसके एक डंडी लगा लीजिए, आपका देखिए कि पूरा घर का वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और तो और मेरा एक निवेदन है, आज के इस दौर पे प्रदूषण से हर कोई की तबीयत खराब होती है, बड़ा नुकसान होता है, हर घर में एक सिर्फ इसकी डंडी बस लगा लें, आप ये मान के चलिए कि उसके आधे रोग यूं ही गायब हो जाएंगे।
आप तो कुछ बता रहे थे प्रधानमंत्री के पास आप लेकर गए पौधे।
जी जी हाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ जी इसको एक मैं इसका एक पौधा ले गया था, तो वहाँ एक जांच होती है। अच्छा। कई जांचों से निकलना पड़ता है, प्रधानमंत्री अगर ये लिफाफा भी देते हैं तो उसको प्रदूषण का और कई चीज का जांच लेके जाते हैं। जब मैं 2 पौधे लेके गया, सेना का पूरा उसमें रहता है जांच करने के लिए, पौधा लेने भेंट करने गया, तो वहां पर जितने भी जांच करता थे प्रदूषण मापक यंत्र और क्या क्या यंत्र, जब प्रदूषण मापक यंत्र को उन्होंने इस पौधे के पास रखे तो उन लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्या धरती में ऐसे पौधे भी होते हैं कि जिनको रखने पर से प्रदूषण कम हो जाता है, उसका पत्र भी मेरे पास पड़ा है।
जी हाँ, तो इस पौधे के साथ साथ आज जैव ईंधन दिवस पर इस पौधे की खासियत के बारे में हमको विस्तृत रूप से जानकारी दी पेंड्रा मरवाही गौरेला क्षेत्र के पूरन छाबरिया जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पण रेडियो को इतना वक्त देकर हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण चीज को, छत्तीसगढ़ के रत्न को आपने आगे बढ़ाया। आपको भी, आपका भी आभार, आपको भी धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन के प्रयास और संभावनाएं, इस विषय पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के श्री पूरन छाबरिया से भी हमने बातचीत की।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।